ดีJasodhanandana Rajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Giridhara Dhari JayaJasoda Nandana Rajajana Ranjana Jasoda Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari JayaGopijana Vallabha Giridhara Dhari Yasoda Nandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Giridhara Dhari Jaya Gopijana VallabhaYasoda Nandana Vrajajana Ranjana Yasoda Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari JayaGiridhara Dhari Jaya Gopijana Vallabha Yasoda Nandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Jaya ShriHare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jaya Lalita Visakha, Jaya Radhesham, Lalita Visakha, Jaya Radhesham. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Gauranitai. Prabhupad, 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 Jaya Jaya Prabhupad, Prabhupad. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतरशी श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ परिधाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौर नेताय की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ अष्टम स्कंध अध्याय 11 इंद्र द्वारा असुरों का संहार। इस अध्याय के आज 9, 10, 11, 12 आज पुरुषोत्तम मास का भी प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मुझे बताया गया पुरुषोत्तम मास के बारे में भी थोड़ा बोलना है। तो पहले भागवत के श्लोक हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने पुरुषोत्तम मास के बारे में बताएंगे। 12 नंबर श्लोक में तात्पर्य है, उसको साथ में आवृत्ति करेंगे। मैं स्वयं 9, 10, 11 पढ़ लेता हूँ, इसमें कोई रिपीट नहीं करना। न वयं मन्यमानानां आत्मानं तत्र साधनं गिरो वह साधु सच्चानं गृह्णीमो मर्म ताडनः। तुम देवता लोग आपने आपको अपनी ख्याति तथा विजय प्राप्त करने के कारण मानते हो, तुम लोग की अज्ञानता के कारण साधु पुरुषों को तुम्हारे लिए तरस आता है, अतएव तुम्हारे वचन मर्माहत करने वाले होते हुए भी हमें स्वीकार्य नहीं है। 10 श्री शुक उवाच इत्याखिप्य विभुं वीर नराचैर्वीरमर्दन आकर्ण पूर्णैर नाद्यखै पैराहतं पुनः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्वर्ग के राजा इंद्र को इस प्रकार कटु वचन से फटकारने के बाद वीरों का दम मर्दन करने वाला बलि महाराज ने नाराज बाणों को अपने कान तक खींचा और उनसे इंद्र पर आक्रमण कर दिया। फिर उन्होंने पुनः इंद्र को कठोर शब्द में फटकार लगाई। एवं निराकृत देव वैरिणा तथ्यवादिना नामृष्यत तदधिक्षेपं तोत्राहतः इव दीपः। क्योंकि महाराज बलि के फटकार सत्य थी, अतएव राजा इंद्र तनिक भी खीर्ण नहीं हुआ। जिस तरह कोई हाथी महावत द्वारा अंकुश से पीटा जाने पर भी कभी विचलित नहीं होता। प्राहरत कुली 12 नंबर श्लोक साथ में प्राहरत कुली संतस्मा अमोघं परमर्दन मायानो न्यपतत भूमौ छिन्न पक्ष इवाचल प्राहरत कुली संतस्मान अमोघं परमर्दन सयानो न्यपतत भूमौ छिन्न पक्ष इवाचल प्राहरत कुलिसंग तस्मात् अमोघं परमर्दनः सयानोन्यपतत् भूमौ छिन्न पक्ष इवाचलः। माता है शब्दार्थ प्राहरत मारा जाकर कुलीशम वज्रदंड तस्मई उनको बलि महाराज को अमोघम अच्युता परमर्दन शत्रु को हराने में पटु इंद्र सजान अपने वायुजान सहित न्यपतत गिर पड़े हुमऊ पृथ्वी पर छिन्न पक्ष जिसके पंख काट लिए गए हो इव सदृश अचल पर्वत। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब शत्रुओं को हराने वाले इंद्र ने अपना अमोघ वज्र बलि महाराज पर उन्हें मारने की इच्छा से चलाया तो सचमुच बलि महाराज अपने वायुजान समेत भूमि पर गिर पड़े, मानो कोई पर्वत पंख काटे जाने से गिरा हो। तात्पर्य वैदिक साहित्य के अनेक वर्णन में पाया जाता है कि पर्वत भी अपने पंखों से आकाश में उड़ते हैं। जब ऐसे पर्वत मृत हो जाते हैं तो वे जमीन पर गिर जाते हैं जहां वे विशाल मृत शरीरों के रूप में रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరతిశై నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ప్రహారత్ కులిశం తస్మాత్ అమోఘం పరమర్దన శయానో న్యపతత్ భూమౌ చిన్నపక్ష ఇవాచల. జబ్ శత్రువు కు హరానే వాలే ఇంద్ర నే అప్నా అమోఘ వజ్ర బలి మహారాజ్ పర ఉన్నే మారనే కి ఇచ్ఛా సే చలాయా తో సచ్ముచ్ బలి మహారాజ్ అప్నే వాయుజాన సమేత్ భూమి పర గిర పడే. మానో కోయి పర్వత్ పంఖ కాటె జానే సే గిరా హో. హరి కృష్ణ. తో సముద్ర మంథన్ కే బాత్ जो समुद्र मंथन के जो अंतिम जो वस्तु प्राप्त हुआ वो क्या था? अमृत. कौन लेके प्रकट हुए? धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और राक्षस शुक ने इनसे छीन कर लेकर भागे. कौन पहले पिएगा उसी में उनके राक्षस शुक के परस्पर में झगड़ा लग रहे थे और देवता लोग देखे कि उनकी अमृत पान से वंचित हो रहे हैं इसलिए सब भगवान के शरण में गए. तो भगवान ने स्वयं इनको आश्वासन देते हुए फिर मोहिनी रूप में प्रकट होकर मोहिनी अवतार में बहुत आसान से राक्षसों को मोहित करके उनके हाथ से फिर अमृत कलशा ले लिए और उनसे वचनबद्ध उनको वचनबद्ध करा के उनको चुप कर दिए कि जो मोहिनी ने कहे कि मैं जहां जो भी करूंगा तुम लोग कोई प्रतिवाद नहीं करोगे, यदि बोलोगे तो मैं ये अमृत बांटने की जमींदारी लूंगा. तो जब ये हाँ भरे राक्षस लोक ने भगवान ने बहुत निपुणता पूर्वक अमृत किसको पिला दिए? देवताओं को सारे अमृत पान करा दिए हैं. इसके बीच में दो राक्षस जो कि आकर समझ गए कि अमृत हमको मिलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने देवता वेश बदला के चंद्रमा चंद्र और सूर्य के बीच में बैठकर अमृत पान करने लगे. कौन थे? राहु और केतु. तो इसलिए भगवान ने स्वयं जो चंद्र सूर्य के द्वारा इंगित करने के पर भगवान ने स्वयं वहीं पर चक्र का उठा सुदर्शन को बुलाकर दोनों का गर्दन काट लिए. तो इसके बाद भगवान स्वयं रूप में आ गए. तो इनको देखकर स्वयं नारायण के रूप में विष्णु रूप में देखकर ये राक्षस लोग और अपने धैर्य धारण नहीं कर पाए, सब तुरंत हैं लड़ाई करने के लिए उद्यत हो गए. लेकिन अमृत पान किए हुए देवगण बहुत शक्तिशाली बन चुके थे. भगवान तो स्वधाम में प्रत्यावर्तन कर लिए. राक्षस और देवताओं की युद्ध छिड़ गया. तो ये लोग अमृत पान करके बलशाली होने के कारण राक्षस लोगों को बहुत आसान से परास्त किए. वो भी युद्ध शुरू हो गया. किसके किसके बीच में? देवता और राक्षस के बीच में. इसलिए अभी देवता लोग ने इंद्र द्वारा असुरों का संहार इंद्र अभी सभी असुरों का संहार कर रहा. विशेष रूप में यहाँ पर किसके बारे में चर्चा हो रही? बलि महाराज. जो युद्ध प्रारंभ हुआ तो बलि महाराज के साथ विशेष रूप में इंद्र किसके साथ युद्ध कर रहे थे? बलि महाराज के साथ. और अन्य अन्य राक्षस लोग ने अन्य देवताओं के साथ युद्ध कर रहे थे. लेकिन यहाँ पर वर्णन आता कि बलि महाराज जब देखे कि ने ये राक्षस लोग ने पराजय अपने आप पराजय के युद्ध क्षेत्र पलायन कर रहे हैं और देवता लोक ने विशेष रूप में अपनी जय का घोषणा करते हुए अत्यधिक हर्षित हो रहे हैं। और तो इस प्रकार कहकर उन्होंने जो देवताओं को राक्षस लोक ने फटकारा रहे थे, तभी बड़ी महाराज ने कहे कि आप देवता लोक अपने आप अपनी ख्याति तथा विजय प्राप्त करने के कारण अपनी को मानते हो है, लेकिन प्रकृति में जय और विजय के कारण कौन होता है? ये दैव बाप ने, दैव बाप स्वयं भगवान ही, किसी समय में हमारा जय होता कभी तुम्हारा जय होता, इसमें कोई ये युद्ध क्षेत्र में कोई इसके लिए हर्षित बा दुखी नहीं होना चाहिए है। सम लाभा लाभौ जया जऊ, लाभ हानि जय पराजय इसकी प्रति ही भ्रुक्षेप न करते हुए अपने कर्तव्य को केवल निभाना चाहिए। युद्ध क्षेत्र में कोई जय, जो भी कोई किसकी मृत्यु होता है तो इसको क्या प्राप्त होता, वीर गति प्राप्त हो जाता है। और यदि कोई युद्ध जीता तो फिर राज्य बहु करता है। तो इसलिए बड़ी महाराज ने कही कि इंद्र तुम जो देवता लोग इतने हर्षित हो रहे हो युद्ध के लिए, अपने को ही तुम मानते हो, हमें ही करता है और हमारा हंसी उड़ा रहे हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तभी इंद्र देखा शांत हो गया, पर जो बोल रहे बड़ी महाराज जो बोल रहे तो सही है, इसलिए उन्होंने कुछ इसको उत्तर नहीं दिया है। जो राजा इंद्र को इस प्रकार कटु वचन से फटकारते हुए बड़ी महाराज ने इनको कहा कि देखो तुम ऐसा हर्षित, अधिक हर्षित होना उचित नहीं है। यह कहने के साथ साथ बड़ी महाराज ने भी अपने बाणों के सामने अपने नाराज बाणों को अपने कान तक खींचा और उस अपने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। कौन? बड़ी महाराज। तो बड़ी महाराज जब आक्रमण करते हुए देखा तो इंद्र ने अपना क्या उठाया, वज्र उठा लिया है। तो वज्र को किसके ऊपर फेंका? बड़ी महाराज की। तब तो इस पर यहां कह रहे कि जब जब इंद्र ने अपना अमोघ वज्र को महारत कुली संघ तस्मद अमोघ परमर्दन, जब ये अमोघ वज्र अस्त्र को फेंका, तभी शत्रुओं को जो सब समय हराने वाले जो इंद्र है, ये वज्र को इसीलिए प्रहार किया क्योंकि इसका इच्छा क्या था, बली महाराज को संपूर्ण रूप में वध कर देने का, बली महाराज को जान से मार डालने के लिए इसकी इच्छा था। तो वह इसीलिए वो वज्र को चलाया। तो सचमुच वज्र चलाने से कारण बली महाराज ने वज्र की प्रहार को सहन न करते हुए पूरे अपने विमान के साथ स्वयं बली महाराज और जिस विमान में बैठकर युद्ध कर रहे, युद्ध में लड़ रहे थे इंद्र के साथ, विमान के समेत जो बली महाराज भूपतित हो गए हैं, निपतित हुए। यहाँ पर एक तुलना दी गई कि छिन्न पक्ष युवा चल, जैसे पैसे तात्पर्य में लिखते प्राचीन काल में ये पता चलता है पुराणों में इतिहास से कि भी सब जो पहाड़ जो सब थे पर्वत सब, ये भी इनका भी सब पंख रहता था, ये भी आकाश में उड़ सकते थे। ये पहाड़ जब उड़ते उड़ते ऐसे उड़ के जाकर फिर एक जगह में जाकर क्या करते थे, बैठ जाते थे। तो वहां पर कितने गांव हो कुछ हो सभी इसके नीचे में आ जाता था। इसलिए सभी लोग इंद्र को तो थोड़ा अनुनय विनय किए, ऐसा परेशान कर रहा है पहाड़ है, कोई पहाड़ उड़ के आएगा और क्या अपने गांव के ऊपर बैठ जाएगा तो क्या होगा है। तो इसलिए इंद्र ने अपने वज्र प्रहार करके ये पहाड़ों के सब पंखों को काट दिया। इसलिए आजकल पहाड़ उड़ते नहीं है, पहाड़ एक जगह में बैठा रहते हैं, एक ही जगह में बैठा रहते हैं। उसी बात को प्रभुपाद लिखते हैं कि ये वैदिक साहित्य अनेक वर्णन पाया जाता है कि पर्वत भी अपने पंखों से आकाश पर उड़ते थे। जब ऐसे पर्वत मृत हो जाते हैं जमीन पर गिर जाते हैं और जो पंख काट जाने के कारण पहाड़ और दोबारा उड़ने का उनके पास क्षमता नहीं रहता है। यहाँ की वे विशाल पर्वत एक मृत शरीर के रूप में एक स्थान पर रहते हैं, आज वो उड़कर इधर उधर नहीं जा सकते हैं। यदि हिमालय पर्वत का पंख होता अभी उड़ना तो क्या होता है, हिमालय के, लेकिन अभी भी हम जानते हिमालय एक व्यक्ति है ना, हिमालय और मेनका उनकी पुत्री कौन है, पार्वती है, है? तो लेकिन अभी पहाड़ों की ऐसे उड़ने का शक्ति नहीं है। तो आज पुरुषोत्तम मास की प्रारंभ दिन है, पहला दिन है। पुरुषोत्तम कौन है, कौन कह रहा है, जगन्नाथ कौन कह रहा है, कृष्ण कौन कह रहा है, पुरुषोत्तम कौन है, हैं? जय गौरा सही कृष्ण सही जगन्नाथ, हैं? वासुदेव घोष कहे करी जोड़ हाथ। जे गौरांग महाप्रभु को जो मानता है वो भी ठीक है, जो जगन्नाथ को मानता ठीक है, जो जो कृष्ण को मानता सही है। लेकिन पुरुषोत्तम मास इसको और क्या कहते हैं, इसका नाम और क्या है, अधिक मास और मल मास, और दो जानते हैं। चलो पुरुषोत्तम मास, ये सृष्टि के प्रारंभ में पुरुषोत्तम मास नहीं था। सृष्टि के प्रारंभ से कितना महीना थे, 12 महीने। भगवान जो सृष्टि की है सबसे 12 महीना के सृष्टि की, और 12 महीना का प्रत्येक महीना की एक अधिष्ठाता देवता रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही रहते हैं। 12 महीना का 12 तिलक लगाते हैं, है ना। तो 12 महीना इसी प्रकार एक एक विष्णु मूर्ति ही एक एक महीना के अधिष्ठाता देवता है, जिन नामों से हम भी तिलक लग धारण करते हैं। जैसे कहा गया कि केशव मार्ग शीर्ष से, तुकी को महीना कहाँ से प्रारंभ होता है, मार्गशीर्ष महीना से, क्योंकि गीता में भगवान कहते कि मासानंग मार्गशीर्ष अस्मिन। इसलिए केशवंग मार्ग से तु पौषे नारायणंग विदु, माधवंग माघ मासे तु गोविंदम अथ फाल्गुनी, चैत्रे विष्णु तथा दद्यात वैशाखे मधुसूदनम, त्रिविक्रम तो तथा ज्येष्ठे आषाढ़े वामनंग विदु, श्रावणे श्रीधरंग विद्धि ऋषिकेशंग तु भाद्रवे, अश्विनी पद्मनाभं च ऊर्जे, ऊर्जे क्या कार्तिक, ऊर्जे दामोदरं विदु, द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय जपठेत् सर्व पाप विनिर्मुक्त विष्णु लोक महियते। ये कहते कि 12 महीने में ये 12 अधिष्ठाता देवता है, हैं? लेकिन अधिक मास का कैसे सृष्टि हुआ ना, और डिटेल में नहीं कह रहा हूं, संक्षेप में हम जो वर्षों की गणना करते हैं इसमें एक होता सौर वर्ष अर्थात सूर्य की गणना के आधार पर, और दूसरा सूर्य चंद्रमा की, इसलिए सौर वर्ष और चंद्र वर्ष कहते हैं। तो सौर वर्ष जो होता है, जो सूर्य की गति के आधार पर जो गणना की जाती है, तो ये वर्ष कहते कि 365 दिन 9 मिनट लगभग ऐसा ही ज्योतिष गणना में। लेकिन ये जो चंद्र वर्ष है ये 354 दिन होता, कितना 54 दिन, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों साइड में घूमने में जो दिन लगता है। तो इसलिए ये 354 दिन और वो 365 दिन, बीच में कितना फर्क आ गया, 11 दिन फर्क आ गया। ये 11 दिन 3 साल में मिलकर कितना हो जाते हैं, 33 दिन है लगभग। इसलिए तो ये जो 33 दिन अधिक हो जाते हैं, 3 साल के थोड़ा कम समय में आ जाता है क्या, अधिक मास। ये अधिक मास एक महीना पूरा हो जाता है तो अधिक मास आ जाता है। तो ये अधिक मास जब सृष्टि हुआ तभी इसको सब लोग, कोई इसको आदर नहीं दिया, किसको, अधिक मास को, सब कहे मल मास है, इस कार्य में किसी महीना में किसी प्रकार के शुभ कार्य करना वर्जित है, इस महीना में कोई कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं, हैं? भौतिक दृष्टि से अभी भी कोई नहीं करते, कोई अच्छा काम नहीं, गृह प्रवेश की शादी कोई भी यज्ञ आदि कर्म नहीं करते हैं। लेकिन ये महीना एक कार्य के लिए अच्छा है, कौन सा कार्य, भगवान का पुरुषोत्तम, है पुरुष भगवान पुरुषोत्तम के भक्ति करना। यदि इस महीना में कोई भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में नवधा भक्ति को अपनाता है, तो उसको करोड़ों गुण अधिक का फल मिलने वाला है, अधिक फल देने वाला है। निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करोगे, भगवत प्राप्ति के लिए यह महीना सबसे उत्तम है, है? लेकिन अन्य कुछ भौतिक कार्य के लिए उत्तम नहीं माना जाता। तो इसलिए आप लोग को क्या चाहिए, भौतिक चीज चाहिए कि भगवत धाम चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। लेकिन प्रारंभ से जब ये महीने को सब लोग अनादर करने लगे तो वो बेचारा बहुत दुखी हो गया। कौन सा? ये प्रत्येक महीना को एक व्यक्ति के रूप में भी चित्रण की गई है, और इसलिए पुरुष तो मास का भी एक, इनको सब स्त्री रूपा मानी जाती है। तो इसलिए वो जो अधिक मास थी तो इन्होंने देखा कि कोई इसको आदर नहीं कर रहे, सब इसको कहले मौल मास है, गंदगी महीना है, हाँ ऐसे किसी कार्य में नहीं आता है, इसको बहुत निंदा करने लगे लोग, इसको देखना भी नहीं चाहे लोग, हैं बोले कब ये बीत जाता है जल्दी। ऐसे सब लोग देखकर मौल मास ने जब देखी कि सभी लोग अनादर कर रहे हैं, दुखी होकर हैं बहुत रोने लगे, क्योंकि मेरा कोई अधिष्ठाता पति नहीं है। प्रत्येक महीना के सब अधिष्ठाता पति के रूप में भगवान विष्णु अन्य अन्य महीना में अधिष्ठाता इनको इनके रक्षण वेक्षण के दायित्व उनके ऊपर है, लेकिन मौल महीना के कोई बाधिक मास का कोई इनकी अधिष्ठाता देवता नहीं था। तो इसलिए बड़े दुखी होकर उन्होंने भगवान विष्णु के पास में पहुंचा, हाँ जो क्षीरोदकशायी विष्णु, जो क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास पहुंचा, पहुंचकर बहुत रोने लगा। कई जगह कहते ब्रह्मा जी ने की गई बात, कोई कहते कि स्वयं जाकर वहां पहुंचा। ये बृहत नारदीय पुराण से ये इसका विशेष वर्णन है, अन्य अन्य पुराण में है संक्षेप में, अन्य पुराण में भी है, पद्म पुराण में है, भविष्य उत्तर पुराण में है, लेकिन बृहत नारदीय पुराण में विशेष रूप में विस्तार से वर्णन की गई। तभी तो उन्होंने जाके जब भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, भगवान विष्णु को अपने दुख बताते रहे कि मैं सुइसाइड कर दूंगा, मैं आत्महत्या कर दूंगी, कौन अधिक महीना मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारे जगत मुझे कोई भी अच्छा नहीं बोल रहा है, सारे मुझे निंदा कर रहे हैं, मेरा कोई अधिष्ठा देवता नहीं है, मुझे कोई नाम भी नहीं है, लोग मुझे मौलमास ऐसे कह रहे हैं। तो इसी प्रकार रोने लगा। तो भगवान विष्णु बड़े दयालु होकर कहे कि ठीक है चल, मैं भी इसका तो कुछ प्रतिकार नहीं कर सकता हूँ लगता है, क्योंकि तुम्हें अधिक एक महीना निकला है, तो इसका तुमको लेके चलता हूँ गोलोक में, स्वयं गोलकाधिपति भगवान श्री कृष्ण इसका कुछ पुरुषोत्तम कुछ व्यवस्था कर सकेंगे। ऐसे कहकर उन्होंने स्वयं लेकर चले इनको, भगवान विष्णु लेकर कहाँ पहुंचे? गोलोक में, वृंदावन, गोलोक वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण के चरण में लेकर इसको डाले, इसको अधिक मास को। तो भगवान श्री कृष्ण देखिए ये वहां पर भी जाकर रो रही थी, कौन अधिक मास, वहां भी जाकर भगवान के सामने रोने लगी। भगवान की कि कैसे ये गोलोक वृंदावन, यहां पर कोई कुछ ऐसा ही कोई दुखी होने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं कभी, ये आकर यहां पर रो रही कौन है, किसको लेके आए? तो भगवान विष्णु ने कहे कि सब कहे देखो इसका ऐसा ही जो स्थिति है, ये तो अभी 12 महीने माने चंद्रमास और चंद्रवर्ष के बीच में ये जो 11 दिन का फर्क आ रहा है, ये तीन सालों में आए मनुष्य की गणना के आधार पर तीन ये एक अधिक मास निकला, और इसका कोई अधिष्ठाता देवता नहीं है, ये पति ही ना होने के कारण इसको कोई रक्षण भक्षण का कोई सहार नहीं कर रहा है, इस महीना में किसी प्रकार के शुभ कार्य कोई नहीं कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग इसको बड़े घृणा दृष्टि में देख रहे हैं समाज में, तो इसलिए बड़े दुखी होकर मेरे पास आया, लेकिन मैं तो इसका कुछ व्यवस्था नहीं कर पाया, इसलिए आपके पास में लेकर आया। तो भगवान ने बड़े प्रसन्न हो गए इसको देखकर, तभी भगवान ने कहे कि ठीक है तो मेरे पास जब के लेके आए हो इसका दुख अवश्य मैं हरण कर लूंगा, चिंता मत करो। हाँ तो भगवान ने कहने लगे कि अहम तिर्यतालोके प्रथितः पुरुषोत्तम तथायम अपिलोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तम तस्मै समर्पिता सर्व गुणामयी संस्थिता पुरुषोत्तम मेति मन्नाम प्रथितं लोक वेदयो। कहे कि देखो जैसे सारा संसार के लोग मुझे क्या कह रहे हैं, पुरुषोत्तम के रूप में मुझे सभी लोग परी पूजा करते हैं, मुझे स्वीकार करते हैं, जैसे मैं पुरुषोत्तम के नाम सर्वत्र विख्यात हूं, और ये अधिमास बाधे जो अधिक मास ये आज से पृथ्वी पर भी मेरे समान पूजित होगी और मेरे नाम से ही ये महीना के नाम होगा क्या पुरुषोत्तम मास। मैं ही इसका स्वयं अधिष्ठात्रा देवो हूं। जैसे अन्य अन्य महीने के सब विष्णु विष्णु की भिन्न भिन्न रूप में भगवान विष्णु ही उनके अधिष्ठाता देवता है। क्योंकि ये जो अधिक मास है ये सभी विष्णु को भी आदि विष्णु कौन है श्री कृष्ण। कहे कि मैं ही स्वयं इनका अधिष्ठाता देवता हूंगा है आप और सभी अन्य 12 महीने में तो विष्णु मूर्ति अधिष्ठाता देवता है लेकिन मैं स्वयं अधिष्ठाता देवता होने के कारण ये 12 महीना से अन्य जो महीना से ये अधिक श्रेष्ठ बा इसकी महिमा अधिक होगा। और पुरुषोत्तम मास जैसे मुझे सारा जगत पूजन करता है उसी प्रकार ये पुरुषोत्तम मास में भी मास को भी सभी लोग पूजा करेंगे। ये मेरे समान यशस्वी और फलदायी बनेगी। जैसे ही सभी को मुक्ति पुरुषोत्तम प्रदान करते हैं इसी प्रकार इस महीने में जो भी कुछ व्रत रखेगा तब जो कुछ मास को महिमा को जानते हुए व्रत रखेगा वो भी उस मेरे पुरुषोत्तम धाम को जन्ममुक्ति संसार से मुक्त होकर प्राप्त कर लेगा। ऐसे कहकर भगवान ने उसको वरदान दिए। किसको पुरुषोत्तम मास को वरदान दिए। ये मुक्तिदायिनी बनेगी। केवल मुक्तिदायिनी नहीं ये मेरे चरण में प्रेम भक्ति भी प्रदान करने में सक्षम बन जाएगी। ऐसे कहे तो भगवान ने भगवान की ऐसे बात सुनकर थोड़ा शांत हुई। कौन अधिक मास शांत हुई। अत्र मास अधिपश्च मन्नाम मयि वयम प्रतिष्ठित पुरुषोत्तमेति मन्नाम तद्यपास्मै समर्पितम्। कहे कि ये मेरे नाम से आज से परिचित हो जाएगा। मेरे समान ये जसोसी और सभी गुणों में गुणी तथा सभी सर्वत्र ये प्रशंसित होगा। ये कहकर भगवान ने इसको वरदान दिए। किसको अधिक मास को है। तब से ये महीना का जो नाम हुआ पुरुषोत्तम मास है। ये प्रत्येक महीना के साथ कभी ये जो महीना अधिक मास आया ये कौन सा महीने के साथ आ रहा है श्रावण के साथ है। कभी कभी ये अधिक मास आषाढ़ महीने के साथ यदि आता तो क्या होता है जगन्नाथ जी के नवकलेवर होता है। आषाढ़ महीने के साथ यदि आता है ये श्रावण महीने के साथ आ रहा है। इसलिए अभी नहीं इसको अधिक मास है कहते। ये अधिक मास की जो महिमा ये व्रत के बारे में स्वयं प्रसंग आता है कि नारद जी भ्रमण करते करते आए कहाँ बद्री का आश्रम में पहुंचे। बद्रीनारायण जहाँ नर नारायण ऋषि रहते हैं तो भगवान नारायण के चरण में पहुंचे और उसी समय ये अधिक मास का प्रारंभ हो रहा था। तभी तो नारद मुनि ने भगवान नारायण को ये प्रश्न पूछे थे है पुरुषोत्तमस्तु को देव महात्म्य तस्य किं मुने अति अद्भुत मिवा भाति विस्तारेण बदस्वमे। तो कहे कि पुरुषोत्तम देव कौन है जो कि पुरुषोत्तम महीना के अधिष्ठाता देवता है और ये पुरुषोत्तम मास की क्या महात्म्य है आप कृपा करके मुझे विस्तार से इसके बारे में बताइए। नारद जी के साथ प्रश्न पूछते ही भगवान पुरुष जो कि स्वयं नारायण ऋषि जो नरनारायण के रूप में आज भी बद्रिकाश्रम में पूजित हो रहे हैं तो नारायण ऋषि ने कहे कि पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्ति सहेतुकम् तस्य स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम उच्यते। कह के देखो ये जो पुरुषोत्तम मास है ये मेरा ही नाम से नामित है और इसकी पुरुषोत्तम मास बाय अधिक मास का स्वामी कौन है कृपा सिंधु पुरुषोत्तम स्वयं श्री कृष्ण ही इसका अधिष्ठाता देवता है। इस प्रकार जो बातचीत वहां नारायण ऋषि और कौन नारद मुनि के बीच में हो रहा है उसी बातचीत भी कहां पर हो रहा है नवीसारण्य में सुत गोस्वामी कह रहे 88,000 ऋषियों को साथ भी पुरुषोत्तम मास महिमा को वर्णन कर रहे हैं साथ साथ वही पुरुषोत्तम मास के महात्मा को भगवान श्री कृष्ण काम्य वन में जो पांडव लोक ने थे युधिष्ठिर आदि पांडवों को भी जहां द्रौपदी भी शामिल थी उनको भी भगवान ने ये कहानी कह रहे पुरुषोत्तम मास की महात्म्य कि भगवान श्री कृष्ण एक बार भ्रमण करते करते पांडवों के बारे में चिंतन किए कि पांडव लोग तो सब कुछ सटा खेलने में सब कुछ खो दिए हैं। और अभी कहाँ दुख में, सुने थे कि काम्य वन में रह रहे हैं और भगवान इनको मिलने के लिए कि पधारे काम्य वन में, स्वयं द्वारका से गरुड़ पीठ में बैठकर यहाँ पधारे। तो काम्य वन में जब पहुंचे पांडव लोग भगवान को देखकर बड़े हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न हो कि भगवान को बड़े आदर किए, इनको इनके चरण अभिषेक आदि करके पूजन करके फिर इनको इनके पास में सभी बड़े हर्षित होकर बैठे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे जनार्दन, हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, हमें इतने दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? द्रौपदी ने बोला कि देखो, हमें ऐसे कौन कर्म किए हैं जिस कारण से मेरे केस को बाल को पकड़कर मुझे जमीन में घिसीटते हुए लेके आया कौन? दुशासन। ऐसा क्यों मेरा स्थिति हुआ? तो भगवान ने फिर कहानी कहते हैं, कहते कि देखो कि द्रौपदी, तुम पूर्वजन्म, तुम्हारा जो मैं बता रहा हूं, तुम पूर्वजन्मों में मेधावी ऋषि के पुत्री मेधावती, तुम्हारा नाम क्या था? मेधावती। लेकिन तुम्हारे माँ का तो बचपन से ही मृत्यु हो गया था और पिताजी तुम्हारे यौवन अवस्था आने से तुम्हारे पति की ढूंढते कहीं तुम्हारे योग्य पति न देखते हुए दुखी होकर इनका भी शरीर छूट गया। तभी तुम अकेले ही आश्रम में रहता था, पिताजी के आश्रम में, और सदा भगवान शंकर जी को पूजन करता था, है? और तभी एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते दुर्वासा मुनि तुम्हारे आश्रम में पधारे। दुर्वासा मुनि को देखकर तुम तो उनको प्रणाम किया, इनको अभ्यर्थन किया, इनके बात में कहा कि हे मुनिवर, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के मित्र थे मेधावी ऋषि का। तभी दुर्वासा मुनि ने को पूछा कि मेरे स्थिति कैसे, इसका सभा जो स्त्री का कोई पति नहीं होता है तो उसके जीवन, उसका तो कोई सहारा नहीं होता है, ऐसे असहाय स्थिति से मैं कैसे मुक्त होऊंगा? ऐसे जो कहे दुर्वासा को पूछिए, तुमने पूछा तो दुर्वासा ने बोले कि दुर्वासा मुनि थोड़े से आंख बंद कर ध्यान करके बोले कि देखो बेटी, अभी एक महीने के बाद कौन सा महीना आने वाला है? पुरुषोत्तम मास आने वाला। तुम यदि पुरुषोत्तम मास के व्रत धारण करोगे, यदि जितने भी जो कुछ प्रारब्ध सब नष्ट होकर तुझे अवश्य सुयोग्य पति प्राप्त होंगे और तेरी जीवन बहुत सुख से बीतेगा, अंत में तू भगवान पुरुषोत्तम के लोक गोलोक में गोलोक प्राप्त होगा। लेकिन ये तो शंकर जी का पूजा कर दी, इसको विश्वास नहीं हुई। किसको? मेधावती को। क्योंकि ये मुनिवर क्या करे, ये इसको मड़मास कहते लोग, इसको अधिक मास कहते, इसको कोई पूजा नहीं करता, आप मुझे कहते कि उसी महीने में व्रत रखना है, ये क्या बोल रहे हो? ऐसा आप ऐसे ही मर मजा उड़ा रहे हो, ऐसे कहीं मैंने उसको विश्वास नहीं हुआ। किसका बात? दुर्वासा मुनि की बात। दुर्वासा मुनि ने जो पुरुषोत्तम व्रत रखने की इनको सलाह दी, विश्वास नहीं हुआ। दुर्वासा तो जैसे जानते क्रोधी कितने हैं, क्रोधी होना चाहते, अभिशाप दे देना चाहते थे, लेकिन सोचे कि अरे अरे मेरे पुत्री का ने मेरे क्या पुत्री समान, ये मेरा मित्र का पुत्री है और अभी इसका माँ नहीं कि बाप नहीं, मैं अभिशाप दूंगा तो ये पूरा संभाल नहीं पाएगी, इसलिए थोड़ा शांत होकर कहे कि ठीक है बेटी, तुझे मैं अभिशाप नहीं दूंगा, लेकिन तुझे पुरुषोत्तम मास को जो अपमान किया है, पुरुषोत्तम महात्म्य को तो विश्वास नहीं किया, तो इसीलिए तुझे घसीट के हैं जमीन में, तेरी इज्जत को कहीं लूटेगा भविष्य में। तो इस प्रकार जो दुर्वासा मुनि के वचन था, इसीलिए तेरे हालत हुआ। कौन कहे? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन दुर्वासा मुनि ये कहे थे, जिस प्रकार तुमने दुर्वासा ने आज पुरुषोत्तम मास की निंदा करने के, तुम ऐसे ही दुरावस्था को प्राप्त करेगा, उसी प्रकार जिस दिन तुम फिर पुरुषोत्तम भगवान को स्मरण करेगा, वही पुरुषोत्तम भगवान ही तेरे इज्जत रखेंगे और कोई किसी की हिम्मत नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें इस जन्म में ऐसा ही बना और फिर मैं पुरुषोत्तम को स्मरण करने के कारण मैं आकर फिर तेरी रक्षा की। उन्होंने कहे कि द्रौपदी बोला फिर मेरे पांच पति कैसे हुए? तो उन्होंने कहे कि तो क्योंकि तुमने तो दुर्वासा चले जाने के बाद तू फिर बहुत तपस्या की, 4000 साल तक तपस्या करते रहे शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। तो शंकर ने प्रसन्न हुए, लेकिन शंकर जी आकर जब सामने आए और वर मांगने के लिए कहा है, तो तूने 5 बार कह दिया क्या मुझे? मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति, पांच बार तू इसने कह दिया तो फिर वो तथास्तु कहेगा तो पांच पति होंगे। कौन बोला? शंकर जी ने कहे। वो रोने लगी, फिर रोने लगी तो फिर देखो कहे कि तू जानता नहीं दुर्वासा है, भगवान शंकर जी के दुर्वासा मेरा ही अंश में है, है? मेरा ही अंश में दुर्वासा है, तुम उनको अपमानित किया और तुम मुझे पांच बार पति मांगा तो पांच बार पति तुझे मिलेगा, पांच पांच पति मिलेंगे एक साथ। फिर बात में शांत हो कह के चिंता मत करो, तुम्हारे जो पति है सभी भगवान पुरुषोत्तम के महान भक्त होंगे, हैं? इसलिए तेरी कोई अनिष्ट कोई हानि नहीं होने वाला है, ऐसे कहकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए थे। इसलिए द्रौपदी का कितना पति बने? पांच पति। और फिर पुरुषोत्तम व्रत रख के पांडव और युधिष्ठिर महाराज को भगवान कहे कि देखो युधिष्ठिर, तुम लोग को मैं काम्य वन में ही समय को बिता दिया, पिछले महीना जो था पुरुषोत्तम महीना था, तुम लोग पुरुषोत्तम महीना की व्रत धारण नहीं किया, ये बहुत बड़ा गलती किया है, इसीलिए यहीं पर तुमको रहना पड़ेगा। जब तक तुम पुरुषोत्तम मास को फिर पावन नहीं करोगे तुमको निष्कंटक राज्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, है? इसीलिए वर्णन आता कि फिर पांडव लोग ने प्रतीक्षा करके रहे, दो साल के बाद फिर पुरुषोत्तम मास आया, पुरुषोत्तम मास का व्रत धारण किए, पांच द्रौपदी समेत पांच पांडव धारण करके फिर संपूर्ण निष्कंटक हस्तिनापुर के राज्य को फिर प्राप्त किए। एक महात्म्य वर्णन आता जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं पांडवों को, द्रौपदी को। तो इस प्रकार ये नारदीय पुराण में, बृहत नारदीय पुराण में एक कहानी आता कि दृढ़धन्व नाम की एक राजा था, उसका नाम था दृढ़धन्व। ये दृढ़धन्व जो राजा निष्कंटक राज होकर संपूर्ण विश्व के सम्राट था, इसके आज्ञाकारिणी पत्नी, इसके आज्ञाकारी पुत्र, इसके सारे जितने भी सैन्य सामंत, जितने भी कर्मचारी, सभी उसकी इसको भगवान जैसे सम्मान करके इसकी बात मानते थे। तो एक बार इसको चिंतन का आया कि भले मैं ऐसा कैसा हुआ, कोई भी मेरे विरोधी नहीं होता है, सभी लोग मुझे आदर कर रहे हैं, मैं ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिस कारण ने मुझे जिसका इतने सारे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने ऐसे ही चिंतन में व्यस्त थे तो एक बार वाल्मीकि मुनि ने स्वयं उनके घर में पधारे, उनके राजमहल में। तो वाल्मीकि ऋषि ने इनको कहकर सुनाया, कह के देख उन्होंने पूछे कि हे मुनिवर, मुझे बताइए मेरे पूर्व जन्म में कौन सा सुकृति किया था जिस कारण से इस जन्म में मुझे निष्कंटक राजभोग, पत्नी और आज्ञाकारी पुत्र, ये सब मुझे प्रजा सु प्राप्त हुए हैं। तो वाल्मीकि जी ने थोड़ा सा ध्यान करके देखे, कहे कि तुम पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, तुम्हारा नाम था सुदेव, तुम्हारे पत्नी का नाम था गौतमी, जो अभी तुम्हारे रानी बनकर तुम्हारे साथ है। तुम लोग का कोई पुत्र नहीं था, से पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तो बहुत तपस्या किया, 9000 वर्ष साल ऐसे साल तक तपस्या करते रहे हो तुम पति पत्नी दोनों, सत्ययुग का था तो इसलिए तभी तुम्हारे तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुम्हारे सामने गरुड़ के पीठ पर आकर पधारे। भगवान को देखकर कहा कि तुम मांगा पुत्र की वरदान, भगवान विष्णु तुमको देखें, तुम ललाट को देखकर कहे कि देखो 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र लिखा नहीं है, विधि का ये विधान है, पुत्र तुम्हें प्रदान नहीं कर सकते। ये सुनकर तो बहुत तुम रोने लगा भगवान के सामने। सुदेव ब्राह्मण जब बहुत रोने लगा, गरुड़ को दया आ गया। गरुड़ जी ने कहे कि प्रभु आप तो सब कुछ भाग्य भी बदल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपका भक्त के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, भक्त वत्सल है, ये क्या कर रहे, ये पुत्र मांग रहा है, ये आप क्या नहीं दे सकते। तो भगवान ने कहे कि गरुड़ तुमकी इतना दया आ गया तो तुम ही दे दो पुत्र। तो फिर गरुड़ जी ने तथास्तु कर दिया। तो गरुड़ जी कहे ठीक है, भगवान मुझे आदेश दिए है, मैं तुमको वरदान देता हूं, तुमको पुत्र प्राप्त होगा। कहकर चल के चल मैंने गरुड़ पीठ में बैठकर भगवान चले गए। तो उन्होंने गरुड़ के वचन में विश्वास करके घर में आए, लेकिन समय आने पर उनको एक पुत्र संतान प्राप्त हुआ। लेकिन एक बार देवल ऋषि उनके घर में आए, इन्होंने वो बच्चा का हाथ देख रहे थे तो कहे कि ये बच्चे तो बहुत सारे सद्गुण से गुणी है, इनके पास में सभी प्रकार के सद्गुण है, लेकिन एक देख रहा हूं अघटन है, 12 साल उम्र में पानी में डूब के ये मर जाएगा है? तो याद रखे थे वो दोनों पति पत्नी। देखे 12 साल जो हुआ थे कुमार अपने लड़का को बहुत सतर्कता साथ रखण बिखण करते थे। प्रत्येक दिन माँ बाप दोनों इनको चुम्बन देते थे, इनको आलिंगन करते थे। लड़का को समझ नहीं पाता था। एक दिन अपने मित्रों के साथ में नदी में स्नान करने गया और अधिक जल से स्रोत में चला गया। डूब जाने के कारण उसका शरीर छूट गया। तो मृत शरीर को लेकर माता पिता दोनों ऐसे ही गोद में रखकर रोते रहे आए, रो रहे थे ऐसे ही। पूरे मैंने महीना बीत गया है, लेकिन जो महीना कंप्लीट हुआ उसी दिन भगवान स्वयं विष्णु फिर आके उनके सामने प्रकट हो गए। तो कहे कि ये भगवान को देखकर कहे कि बोले प्रभु आप रो रहे थे, बोले रोना बंद करो, तुम्हारे पुत्र को मैं अभी जीवित कर देता हूं और इसको 12,000 साल परमायु प्रदान करता हूं। ये दोनों तो बस बोली प्रभु पहले हम 9,000 साल तपस्या के थे, आप तो उस समय पुत्र प्रदान देना नहीं चाहते थे, गरुड़ जी ने दिया था, और अभी आकर आप बोल रहे कि पुत्र को जीवित करा दिए, फिर कहे कि 12,000 साल परमायु, ऐसे इतनी कृपा कैसे किए? तो भगवान ने कहा कि आप जानते नहीं हो, जिस दिन तुम्हारे पुत्र का मृत्यु हुआ था उसी दिन पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो रहा था, और तुम लोग उसी पुत्र शोक में उसी दिन से अभी 1 महीना पूरा निर्जल व्रत रख लिया है। पुरुषोत्तम मास की व्रत रखने के कारण तुमको ये सौभाग्य प्राप्त हुई, अंत में तुम मेरे पुरुषोत्तम क्षेत्र स्वयं गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर लोगे। ये कहकर भगवान वहां से चले गए। इसलिए दृढ़धन्य मेरा राजा की कहानी ऐसे ही बता गया, वो जो पूर्व जन्म सुदैव ब्राह्मण के रूप में पुरुषोत्तम व्रत धारण करने के कारण ये इतने बड़े महान जसोसी राजा बना था। तो पुरुषोत्तम मास के कई कहानियां है, ऐसे ही 5-6 गल्प है कहानियां से बता गया, लेकिन मैं सारे कहानी एक इसमें बताना संभव नहीं है। कहते कि महाराज नहुष जो कि इंद्रपद में निजुक्त था, बाद में सप्तऋषि ने इनको अभिशाप देकर सर्प रूप में गिरा दिया, फिर पतित करा दिए थे। इस व्रत को धारण करके पुरुषोत्तम व्रत को फिर वो भी अभिशाप से मुक्त हुआ था। कई कहानी है। तभी ये पुरुषोत्तम मास को हम कैसे व्रत कैसे रखेंगे है? कैसा रखना जरूरी चाहे तो प्राय जैसे कार्तिक व्रत को धारण करते हैं, इस व्रत को प्राय ऐसे ही धारण की जाती है। लेकिन इस महीना का अधिष्ठाता देवता है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। कार्तिक महीना का अधिष्ठाता देवता कौन है? दामोदर। लेकिन इस कार्तिक महीना भी किसका महीना है? राधा रानी के महीना ही माने जाता है। लेकिन ये भगवान पुरुष कहते हैं कार्तिक महीना में जो व्रत रखने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी 16 गुण फल अधिक प्राप्त होता है। किसमें? पुरुषोत्तम मास में, ऐसे कहा गया पुरुषोत्तम महात्म्य में। 3 साल में एक बार आता है। तभी व्रत जो धारण करने वाला है पुरुषोत्तम मास का, तो इसको प्रातः क्लास जो कि हमारे स्कर्म में से करते हैं, जो स्कर्म में रहते हैं व्रत सब पालन हो रहा अपने आप है। प्रातः स्नान है, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, हरि जागरण भगवान को जगाना, इनके अर्चन करना, स्नान आदि करना, शौच आदि स्नान करके फिर भगवान के अर्चन करना, फिर तुलसी पूजन, तुलसी में दीपदान है, जलदान, ये सब व्रत प्राय स्कन में हमारा सब पालन हो रहा है। जो स्कन के भक्त है, स्कन प्रोग्राम सब अटेंड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली पुरुषोत्तम व्रत उनका पालन हो रहा है। लेकिन ये तो सब हम पालन करते हैं, लेकिन इस महीना में विशेष रूप में जो निर्जल व्रत रखेगा, जैसे सुदैव ब्राह्मण ने निर्जल व्रत रखा था, तो 1 महीना निर्जल रह गया था उसका, सारे इस जन्म से सुखी होकर फिर अंत में भगवत धाम प्राप्त करने की वरदान प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही कहते कि सत्यजग के लोग इसको निर्जल रखते थे। इसको निर्जल ही रखना संभव नहीं है, इसको कम से कम क्या क्या पी के रहना? पानी पी के रहना है। जिसको पानी पी के नहीं रह पाएगा तो उसको क्या करना चाहिए? फलाहार कर लेना चाहिए, लेकिन एक एक टाइम, ज्यादा ज्यादा से नहीं, फलाहार कह के रहना। जब फलाहार नहीं करके रह नहीं सकता तो फिर एक टाइम खा के रहना है। तो ऐसे ही व्रत को जैसे, लेकिन जैसे जैसे जो जथामांग प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। ये मत सोचो कि जो निर्जल रखी जो व्रत रखेगा उसका जो फल मिलेगा और जो खा पी के व्रत रखेगा सेम फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फास्टिंग रहने के साथ साथ भगवान के नाम जपना ये मेन है। कोई व्रत रखेगा देख खा सो जाएगा दिन भर की ना, फास्टिंग रखेगा, फास्टिंग रखा है इसलिए तो पूरा वीक हो गया तो सो जाएगा दिन भर, तो इसमें कुछ होने वाला नहीं। वरंग खाओ लेकिन भगवान की भजन होना चाहिए है। क्या भजन करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्ते इव नास्ते इव नास्ते इव गतिरन्यथा। ये कली युग का पुरुषतमास है। ये पुरुषतमास अन्य युग में आता तो फिर लोग तपस्या करना उनके लिए सरल होता है, सत्य युग के लोगों को है वो लोग का कुछ एनर्जी अलग रहता है। आ कली युग के मनुष्य के हिसाब से हमें इतनी कठोर तपस्या नहीं कर सकते। जब तपस्या था युग धर्म था सत्य युग के, अभी हमारा युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन है। कृते च ध्यायते विष्णु तृतयांग जजते मुखई द्वापरंग परिचर्यांग कलौ तत् हरिकीर्तना। इसलिए हरिकीर्तन करना, नाम जपना मेन है। जितनी माला हम करते थे थोड़ा बढ़ाना है, जो आप कर पाओगे। माला कितने, जो 16 माला करते थे, इस महीना में कितने माला करना चाहिए? जितने जो 64 माला 32 माला जितने गए हैं, 25 माला एकादशी में करते जैसे है, जप बढ़ाना चाहिए। चारों चीज को घटाना चाहिए। कौन सा? आहार, निद्रा, भय, मैथुन है। ये चार इस महीना में है। कोई गृहस्थ हो, कोई ब्रह्मचारी हो, कोई सन्यासी हो, सभी को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए है। इसलिए ये तो अपने आप घट जाएगा मैथुन। फिर खाना कमाना चाहिए, जितना खा रहे हो है घटाना चाहिए उसको है। कोई 4 बार खा रहा तो, कोई 2 बार खा रहा तो घटाना चाहिए। खाना को, आहार को घटना चाहिए। निद्रा, जो सो रहा है कम से कम तो व्रत लेना चाहिए, दिन में नहीं सोऊंगा है, दिन में नहीं सोना चाहिए। और 6 घंटा से अधिक जो सोता है तो भक्ति नहीं करता है, वो सत्वगुण में नहीं है। सत्वगुणी व्यक्ति प्रभुपाद जी कहते मैक्सिमम 6 आवर है। तो इसलिए निद्रा को घटाना चाहिए, कम से कम ये संकल्प लाना चाहिए कि दिन में नहीं सोऊंगा है। आहार, निद्रा, भय, भय से क्यों भयभीत रहेंगे हम? किसके शरण में है? भगवान पुरुषोत्तम है। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के है। निर्भीक होकर भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए सेवा का बढ़ाना चाहिए, नाम जप को बढ़ाना चाहिए। नाम अधिक से अधिक नाम जप करें हैं। इस महीने में दीपदान का भी बहुत महात्म्य बताया गया है। दीपदान भगवान को जैसे कार्तिक महीना में है, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में भी दीपदान करने की बहुत महात्म्य बताया गया है। ऐसे इस महीने में कोई किसी को चीटिंग नहीं करना चाहिए, धोखा। बुद्ध जीव के 4 लक्षण से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बंदर की कहानी है। बंदर था है उसका नाम था कदर्जी। ये पहले वो पूरा जो अपने ब्राह्मण था पूर्वजन्म में, लेकिन इसके जो ब्राह्मण जात तो उसका नाम भी उस समय भी लोग इसको कदर्जी बुलाते थे, क्योंकि ये बड़ा लोभी था। कहीं भी यज्ञ होता था कुछ करता जाता था, एक बार दान ले आता था, फिर दो बार चला जाता, तीन किसरे जितने संभव इतने दान लेके आता था, ला के सब मिट्टी की गाढ़ा बनाकर अंदर में रख देता था है। सोना रूपा जो कुछ गणा मिलता था उसको, तो ऐसा ही तो वो जीवन बीता है। लेकिन ये इतनी कंजूसी देखकर सारे लोग ऐसे घृणा करते थे है, ऐसे लोभी देखकर। बाद में सब गांव वाले जब इसको निंदा करने लगे, वो गांव छोड़ के उसका मित्र दूर में रहता था कि माने फार्म था उसका, वहां पर जाके मित्र के पास रोने लगा। तो मित्र कहा कि ठीक है आके मेरे पास रहो है। गांव वाले भगा दिए इसको उस गांव से। तो मित्र के पास रहा तो उसका फ्रूट का गार्डन था, तो देखा कि मेरे मित्र है, मैं बहुत दिन से इधर रहा, कहीं तीर्थ यात्रा नहीं कर पाया, मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ और गार्डन को देखने के लिए इसको ही लगा देता हूँ। आइए जब गार्डन रख लिया, ये क्या करता था, गार्डन में जितने फल सब तोड़ तोड़ के सब खाने लगा है, सब चीज बिके बेच देता था, जो अच्छा से बेच देता था, बेच के सब पैसा सब आपने कमा के रखा। मित्र जो घूम फिर के आया, बोला कि कहाँ है, क्या हुआ? तो बोला ये सब बंदर घुस के कहाँ से आ गए जो खा जाते हैं, मुझे पता नहीं है, फल कोई मेरे पास कोई कुछ में संचय नहीं कर पाए, कोई भी बेचता कोई बेचा नहीं, कुछ नहीं, सब उजाड़ गया सही, ऐसे झूठ मूठ कह के पाए तो सब मैंने चीटिंग किया, किसको, मित्र को धोखा दिया। तो फिर ऐसे ही स्थिति में वृद्ध अवस्था में उसका मृत्यु हो गया, लेकिन पूर्व जन्म जैसे कर्म किया था उसी आधार पर उसको बंदर की जोनी प्राप्त हो गया है। कहीं बंदर उजाड़ लिए ये फल के बागान को, तो खुद ही बंदर बन गया, लेकिन कुछ खाने के इसका सख्य नहीं था, हुआ मुख में पूरा घाव जैसे हमेशा रह गया, घाव होता था कुछ भी लाता तोड़ता था एक करता, लेकिन खा नहीं पाता था, सब गिराता था ऐसे ही। ऐसे ही कहते कि बंदर ऐसे ही पुरुष तो मास में एक बार गार्डन में ऐसे ही घूम रहा था, इधर उधर डाल से उड़ा उड़ा ऐसे चिल्ला जंपिंग कर रहा था। देखा वहां के तीर्थ स्थान में एक कुंड था, पुरुष मास होने के कारण पुरुष मास के जो पांच दिन, जैसे भीष्म पंचक की पांच दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सही पुरुष मास का जो अंतिम पांच दिन वो विशेष महत्वपूर्ण है। तभी तो उन्होंने जंपिंग करते करते वो एक पवित्र कुंड में पानी में गिर गया, अब पानी में गिर गया तो उसी में डूब के उसी में गिरते हुए उसको उठाने वाले नहीं, तो वही उसकी मृत्यु, शक्ति नहीं था उसके पास, कई दिनों से खा नहीं पाता था, तो इसलिए उसका मृत्यु हो गया। जब पुरुष मास के महापंचक में इसकी मृत्यु हो गया, तुरंत विमान आकर गोलोक से विमान आकर इसको ले गया, कहाँ, गोलोक वृंदावन। तो इसलिए कहते कि ये पांच, ये पुरुष मास के मैंने अंतिम पांच दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पुरुष मास में दान का भी बहुत महत्व है। इसमें बताया गया कि भागवत, श्रीमद भागवत का जो दान करता है इसकी गारंटी है कहाँ जाना, गोलोक प्राप्ति है, भगवत धाम जाना, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना। पुरुष मास में यदि कोई भागवत दान करता है उसकी विशेष महिमा है। जिसके जिसके सक्षमता है उसको क्या दान करना चाहिए, श्रीमद भागवतम, या भागवत नहीं तो कम से कम गीता, लेकिन पुरुष महात्म बता गया भागवत दान करने का है। और कई प्रकार की जो जैसे व्रत में, इस महीने में व्रत रखे कि यदि कोई संकल्प लिया मैं इस महीने में नंगे पैर में चलूंगा, कभी जूता नहीं पहनूंगा, ऐसा कोई व्रत रखा परिक्रमा, जब नंगे पैर में रहूंगा एक महीना, तो फिर जब महीना खत्म होगा उद्यापन करेगा व्रत का, तो फिर दूसरों को जूता दान करके ब्राह्मणों को फिर बाद में पहनना। तो जो चीज को इस महीना में छोड़ोगे उस चीज को फिर दूसरों को दान करके, ब्राह्मणों को वैष्णव को दान करके फिर खाना, धरो कहूंगा मेरे महीना में ग्रेन नहीं खाऊंगा, राइस अन्न नहीं खाऊंगा, तो फिर महीने के लास्ट में अन्न भोजन दूसरों को कराना गया है, घी अन्न भोजन करके फिर खाना है। जो चीज धर में इस महीना में यही चीज कुछ ऑस्ट्रेलिया करूंगा, ये नहीं खाऊंगा, कुछ त्याग हो गए, इसको फिर दूसरों को दान करके फिर इसको ग्रहण करना, ऐसे व्रत है कि महात्म्य में कहा गया। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास केवल भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है, विशेष रूप में जिसको भगवत प्राप्ति करना है, गोलोक वृंदावन प्राप्त करना चाहता है, ये महीना विशेष में भौतिक कार्य के लिए इतनी उपाधि में नहीं माना जाता, लेकिन भक्ति के लिए सर्वोत्तम मास है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कितने किसके प्रश्न है, किसका कोई प्रश्न है? हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर आप लेक्चर दिया तो वहाँ पर टाइम अधिक था, इसलिए वो विस्तार से बोला था, इधर इधर टाइम नहीं है। आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ तो कार्तिक महीना में दिखाएंगे, आप पुरुष तो मास में सबको कौन ऐसे व्यवस्था नहीं है मैनेजमेंट में, जो आपने दिखाएगा वो अपना अपना बत्ती लेके आएगा, आपने बत्ती ला के दिखाओ, कोई मना है थोड़ी है, पुण्य अपना कमाओगे और मंदिर के मंदिर आपको पुण्य सहायता करेगा, ऐसे नहीं। हाँ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में मीरारोड़ा मंदिर में बोला, वो तो 2-2.5 घंटा टाइम था, विस्तार से बोला था, इधर समय नहीं है। और कोई प्रश्न है? महाप्रसाद गोविंद शुरू हो गए। अच्छा।